ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் ப்ரெசன்டட் பை சுவாமிஜி ஸ்ரீ தத்ரூபானந்த்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திர மந்திர நம்பர் 3.
யஸ்யைவ ஸ்புரணம் சதாத்மகமசத் கல்பார்த்தகம் பாஸ்தே சாக்ஷாத் தத்வமசீதி வேத வச்சசா யோ போதயாத்யாஶ்ரிதா யத் சாக்ஷாத் கரணாத் பவேன் புனராவ்ருத்திர்பவாம்போநிதௌ தஸ்மை ஸ்ரீகுரு மூர்த்தயே நமஃ இதம் ஸ்ரீதக்ஷிணாமூர்த்தே ஸ்ரீதக்ஷிணாமூர்த்தே
யஸ்யைவ ஸ்புரணம் சதாத்மகம் அஸத் கல்பார்த்தகம் பாஸதே. யாப் ஹமே சம்ஜாயா கயா ஹை जगत के जितने पदार्थ हैं उसमें से किसी पदार्थ की अपनी स्वयं स्वतंत्र सत्ता नहीं है. ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, इसने कहा कि मैं चश्मा हूं, ये तो नहीं कहता है. ये क्या है? पानी का ग्लास है. इसने कहा कि मैं ग्लास हूं, मैं स्टील का हूं, मेरे भीतर पानी है, ये तो नहीं कहता है. तो कौन कहता है? इसकी तो स्वयं सत्ता ही नहीं है. मैं हमेशा कहता हूं पृथ्वी नहीं कहती मैं गोल हूं, चंद्र नहीं कहता मैं शीतल हूं, सूर्य नहीं कहता मैं गर्म हूं. तो कौन कहता है? उसका जो दृष्टा है वो परसीवर ऑफ सन, परसीवर ऑफ मून एंड अर्थ. तो देखिए साहब, जगत में जितने पदार्थ हैं, सब पदार्थ का मतलब पूरा जगत, जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं, उसके पास चैतन्य भी नहीं, वो खुद को भी नहीं जानते हैं और दूसरे को बता भी नहीं सकते, जता भी नहीं सकते. दो तीन दिन पहले मैंने दृष्टांत दिया था कि पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ या नीम का पेड़ आजू बाजू में खड़े 40 साल से खड़े हैं. पीपल के पेड़ को पता नहीं है कि ये आम का है या नीम का पेड़, नीम को पता नहीं कि बाजू वाला पीपल का पेड़ है. दोनों है, बोथ एग्जिस्ट, बट दे डोंट नो ईच अदर. व्हाई? उनके पास चेतना नहीं है. है तो सही, सत्ता तो है, अस्तित्व है, अस्तित्व में है, मर अपने को जानते नहीं है. तो यहां पर कहा यस्यैव स्फुरणम, जिसकी स्फुरणा से, जिसकी चेतना से ये जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है जगत के पदार्थ, ये असद भी तो हमें भासते हैं ना. तो बोले हां, यह असत है, जगत सत्य नहीं है, अनित्य है, असत है. ऐसा जो कुछ भी भासता है वो पदार्थों की सत्ता से नहीं भासता है, उनकी चेतना से नहीं भासता है। वो जो परम तत्व आत्मा है उसकी सत्ता से ही असत्कल्पार्थकं भासते। प्रथम पंक्ति देखिए, यस्यैव स्फुरणम सदा असत्कल्पार्थकं भासते, यानी पदार्थ को अपनी सत्ता नहीं है, मगर जिसकी चेतना और सत्ता से वो असद भासते हैं उसके बारे में कहा, वह दक्षिणामूर्ति स्वरूप जो तत्त्वम असी द्वारा शरणार्थी को यानी शरण में आने वाले को, भक्त को, शिष्य को, मुमुक्षु को, साधक को, जो कोई शरण में आता है उसको क्या करते हैं, तो कहते हैं बोधैरी, शरणार्थी को, शरण में आने वालों को वेद वचन के द्वारा उपदेश देते हैं। वेद वचसा यानी कि वेद वचन के द्वारा उपदेश देते हैं, अपना नहीं। साक्षात तत्त्वमसि, तत्त्वम असि महावाक्य है, मगर किसको उपदेश देते हैं, सद्गुरु साक्षात जो सामने बैठा उसको, क्या है जो सामने बैठा उसको, इसलिए उपनिषद का अर्थ उप, उप समीपे सामने, नी उप फिर नी आता है, नितांत नजीक है, जो षड् धातु से षड् उप नी षड् बैठा है। अच्छा, तो ये ज्ञान किसको दिया जाता है, जो नजर के सामने बैठा है। दो दिन पहले एक बहन मेरे पास आई, समझी मैं तो आपको बहुत साल से सुनती हूं। अच्छा बहन जी, आपको तो मैंने कभी देखा नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं तो 20 साल से आपको सुनती हूं। तो कहां, मैं पहले प्रेमपुरी में आती थी, अब नहीं आती हूं। अच्छा, खुद स्वयं प्रेमपुरी में आती थी? नहीं नहीं नहीं, प्रेमपुरी से आपके प्रवचन की कैसेट लाकर मैं मेरे घर में आपको सुनती थी। तो आप आज यहां क्यों नहीं, यहां पर आई थी या ऐसा लगा क्या आपके दर्शन करके जाऊंगी? बहुत अच्छा है बहन जी, आप कहां रहती हो? तो कहती पैडल रोड पे रहती हो, आश्रम में मिलने आई थी मेरे को। तीन चार बहनें थी। आपका बहन जी, हां मैं भी उधर ही रहती हूं, मैं भी आपको सुनती हूं। अरे जिसको मैंने देखा नहीं वो मुझे सुनते हैं? तो मैंने कहा ठीक है, आप देखो मेरे दर्शन के लिए आए हो, तो मेरे बंबई में 23 तारीख से प्रेमपुरी आश्रम में फिर प्रवचन होने वाले, आप कभी आ जाने। स्वामी जी सुबह का समय ऐसा होता है ना, उनको व्यापार धंधा, दुकान खोलना, बच्चे स्कूल जाने वाले, मुश्किल, सुबह नहीं आ सकते। अच्छा चलो, आप नहीं आ सकते तो कुछ नहीं, मैं बंबई आऊंगा, प्रवचन मत आइए, मगर आप अपने घर में मुझे इनवाइट नहीं कर सकते हो, निमंत्रण तो दे सकते हो ना? हाँ स्वामी जी, हमारा भोजन के लिए पधारिए। अच्छा, अब मैंने कहा कि देखो आपने निमंत्रण दे दिया, मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है कि आपके यहां आपका भोजन खाने आऊंगा, ठीक है। अच्छा फिर मैंने कहा कि भोजन खाने तो आऊंगा मैं आपके घर में, फिर मैं डाइनिंग टेबल पे बैठूंगा तो मैं जैसा बोलूंगा ऐसा करना पड़ेगा क्या? तो मैंने उसको कहा कि देखो जब डाइनिंग टेबल में बैठूंगा तो मैं पूछूंगा क्या क्या बनाया, सब आइटम तो, हाँ सब आपको जो पसंद आएगा वो बना देंगे। अच्छा फिर मैं आपको पूछूंगा बहन जी आपके घर में कोई टिफिन बिफिन है? बोले हाँ, तीन खाने वाला, चार खाना, एक तीन खाने वाला चलेगा। फिर आपके घर में जो खाना मेरे लिए बनाया ना वो टिफिन में भर दो, और वो टिफिन लेके मैं प्रेमपुरी आश्रम में प्रवचन करूंगा, जब जिसके घर मेहमान हूं ना उसके घर जाके आपका खाना टिफिन में भर के खाऊंगा। अरे क्या बात कर दो महाराज जी, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो फिर हमारे घर आने का क्या मतलब। तो मैंने उसको वही कहा, तेरा खाना दूसरे के घर में खाऊंगा तू मेरे को कहती इसका क्या मतलब, तो मेरा प्रवचन प्रेमपुरी में कैसेट में भर के तेरे घर में सुनती हूं उसका क्या मतलब है? फिर बोलती 20 साल से जानती मेरे को। अरे ये इधर प्रेमपुरी में मेरा प्रवचन है वो कैसेट में भर के अपने घर में सुन दिए और वो भी कहता है टेपरों को लगा हुआ है वो खाना पका दिए पता नहीं क्या सुनती होगी। और ऐसे ही हमारे भाई लोग हैं घर से ऑफिस जाते मेरी कैसेट लगी हुई कार में घुसा दिया है अरे कि एक्सीडेंट ठोक देगा भाई। ये कोई सुनने का तरीका नहीं है। शंकराचार्य ने कहा साक्षात तत्वमसी थी सामने बैठकर गुरु की आंख के सामने टीचर इज नॉट टॉकिंग टू यू थ्रू ओनली लैंग्वेज। जब कोई अच्छा आचार्य शिक्षक बात करता है तो अपनी आंख का उपयोग करता है अपने अंग भाव का उपयोग करता है ही इज ट्राइंग इज बेस्ट टू पेनिट्रेट यू सर। और आपके मुख मुद्रा देख के पता चलता है कि समझ में नहीं आए तो दूसरा दृष्टांत अभी भी समझ जाए तीसरा दृष्टांत एक पर्याय दूसरा पर्याय तीसरा पर्याय कल कितने पर्याय दे दिए तो आपकी मुख मुद्रा देख के पता चलता है कि आपको समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है। और आपको देखते तब पता चलता है कि हम बोलते जा रहे हैं और आप सोते जा रहे हो पता चलता है। इसलिए सामने बैठकर साक्षात जो है साक्षात तत्वमसी इति वेद वचसा वेद वचन के द्वारा यो बोध है इति यानी वो बोध करता है ज्ञान देता है आश्रितान किसको जो शरण में आया है उसको वो तो अपने घर है शरण में तो आती नहीं है फिर ज्ञान कहां से मिलने वाले। और देखो साहब एक बात हम साहब आपको कहते हैं गांव में बंबई का तो मुझे पता नहीं मगर यहां दूसरी मेथड है सब्जी लेने लोग मार्केट में नहीं जाते टेलीफोन कर देते कि भाई इतने इतना करेला भेजना दूधी लूकी भेजना ये भेजिए वो आके दे के जाता है दवाइयां कैसा है और बहन जी टेलीफोन करके बोल दी ये दवाई भेज दो तो भेज देता है वो तो अपने बिल में जो आने जाने का खर्चा तो लगाएगा अच्छा ठीक है। ऐसे गांव में सब्जी वाला आता है रेलवे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है क्या बोलता है चाय वाला। कई सालों से हम लोग सिर के ऊपर टोकरा ले गए ये हमारा माल ले लो हमारा माल ले लो यहां पर आते हैं वो हमारी अवस्था चली गई। सचमुच ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारा गोडाउन एक नर्मदा किनारे पर मनन आश्रम में वहां पर आपको आना चाहिए मगर आपको सचमुच कुछ नहीं चाहिए गोडाउन में नहीं जाना है आपको तो फ्री सैंपल चाहिए तो ठीक है हम कभी कभी आते हैं फ्री सैंपल ले लो हम देते हैं। शंकराचार्य मनाही करते हैं कि साक्षात सामने बैठकर ज्ञान लिया जाता है तो कहा कि वह दक्षिणामूर्ति स्वरूप सद्गुरु उसकी बात है जो तत्त्वम असि द्वारा तत्त्वमसि महावाक्यों द्वारा शरणार्थी को जो शरण में आए उसको वेद वचसा वेद के वचनों के द्वारा उपदेश देते हैं ऐसे श्री गुरु मूर्ति का साक्षात करने से यह साक्षात करना भवेन पुनरावृत्तिर भवाम भव निदव भव सागर है। ऐसे सद्गुरु का उपदेश अगर आपने ले लिया उसने दे दिया ये शरीर छोड़ेंगे उसके बाद बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में आपको नहीं आना पड़ेगा। तो कहते हैं ऐसे श्री गुरुमूर्ति का साक्षात्कार करने से संसार समुद्र में पुनरागमन नहीं होता उनको यह नमस्कार है यह साक्षात करणाद भवे न पुनरावृत्तिर भवाम भव निदौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमैदम श्री दक्षिणा मूर्ते। ये भाषांतर हो गया ट्रांसलेशन इज ओवर माय डियर सर। अभी हम शब्दों को लेकर शब्द का दोहन करने की कला जो इस समाज से लुप्त प्राय हो चुकी है उसके ऊपर आगे चलेंगे। प्रथम श्लोक के अंदर क्या किया गया त्वम पद वाच्य जीव का विचार किया गया था द्वितीय श्लोक के ऊपर उसमें तत्पद वाच्य जो ईश्वर है उसकी विचारणा की गई थी तो तत्पद की विचारणा प्रथम मंत्र में, त्वंपद की विचारणा प्रथम मंत्र में, तत्पद की विचारणा दूसरे मंत्र में, ये तीसरा मंत्र है और इसमें असी पद तत त्वम असी दैट दाउ आर्ट तत व त्वम तू असी है वह तू है। क्या मतलब? तुम हे जीवात्मा तू अपने को मान रहा है जन्मने वाला मरने वाला विकारी परिवर्तनशील अनेक योनियों में भ्रमण करने वाला अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान वो तू नहीं है। तुम्हें कौन हूं? वह कौन? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कर्मफलदाता अजर अमर अविनाशी वो ईश्वर है, वो तू है। या तू अजो नित्य शाश्वत यम पुराण ऐसा जो आत्मा कहा गया सच्चिदानंद स्वरूप वो तू है। वह तू और असी, असी मतलब है, असी मतलब है। गुजराती में कहते छू, इंग्लिश में कहते इज एम और आर। तो देखिए ये तीसरा मंत्र है, इसमें असी पद की चर्चा होगी। असी पद यानी क्या? जो तत्पद और त्वम पद को मिलाता है, दोनों का समन्वय करता है। देखो अभी तो आप वेदांत पढ़ चुके, इसलिए मैं कोई केजी क्लास से उठा के तो बात नहीं शुरू करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि महावाक्य क्या है, छांदोग्य उपनिषद में किसको श्वेत केतु को उपदेश दिया गया था, और जहां जहां मौका आएगा हम आगे बात करेंगे। तो सुनिए साहब, असी पद दोनों का समन्वय करता है, किसका? जीव और ईश्वर का। हे जीव तो ईश्वर है, या जीव और आत्मा दोनों एक ही है, ऐसा समन्वय करता है उसको असी पद कहा जाता है। दोनों का अभेद दर्शाता है, अद्वय दर्शाता है, अभंग दर्शाता है, अभेद दर्शाता है। तो तत त्वम असी, एक होता है त्वम पद तू और एक है तत्पद वह। अब कोई भी जो पद यानी शब्द होता है उसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है वाच्यार्थ और एक होता है लक्ष्यार्थ। तो यहां पर देखेंगे त्वम पद का जो वाच्यार्थ है वो जीवात्मा है, और ऐसे ही तत्पद का वाच्यार्थ है वो ईश्वर है, यानी जीव ही ईश्वर है। देखो ये सामान्य बहुत यात्रा करने वाले मंदिर में घूमने वाले उनको समझ में आने वाली बात नहीं, वो तो मान ही नहीं सकते, वो तो मूर्ति में जो बैठा है उसको ईश्वर मानते हैं। गीता मना कर दी, हमारा उपनिषद मना कर दे, हमारा वेद मना करता है ये चीज की बात। ईश्वर कहां है? ईश्वर सर्वभूतानाम रुद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ये कृष्ण की पूजा करने वाले भी ये चीज को नहीं मानते, ये दुख की बात हो, ये समाज में ये है। कृष्ण ने गीता में कहा 18वें अध्याय में ईश्वर सर्वभूतानाम, भूतानाम मतलब है इन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म लॉर्ड ईश्वरा इज देयर इन द बोजम ऑफ हिज हार्ट, हृदय के भीतर बैठा है वो। अच्छा ईश्वर हमारे भीतर है, हम तो हमारे भीतर उसको जीवात्मा मान रहे हैं ना, अज्ञान में आप जीव मान रहे थे, ठीक है निकालो अज्ञान को, समझो। कैसे समझे? कल तो बताया था कि जो सच्चिदानंद आत्मा है डबल रोल में काम करता है, अविद्या की उपाधि लेकर जीव बनता है, माया की उपाधि लेकर क्या बनता है? ईश्वर बनता है। बस समझ गए आप, समझना है ऐसा। कल एक दृष्टांत दिया था, एक राजा है नगरचर्या देखने के लिए जाता है, वो जमाना ऐसा था ना, राजा लोग जाते थे और अपने राज में क्या क्या हो रहा है, तो वो भिखारी का वेश पलटा करके जाता है, राजा हमारे राज में कैसा कैसा चलता है, और एक मंदिर के आगे भिखारी बैठे उस लाइन में बैठ जाता है, ऐसा कंबल उड़ के राजा बैठा है, और जो मिलता वो लेता भी है और सबकी बातें सुनता है, फिर थोड़ी देर में खड़ा होता है और जहां भीड़ भाड़ होती है उसकी पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, तो लोग बात करते हैं ये राजा बदमाश है, ये राजा है ना भोगी है, उसको पता ही नहीं प्रजा का सुख दुख क्या है, कभी प्रजा की बात नहीं सुनता है, कभी राज दरबार नहीं बनता है। तो राजा अपनी ही निंदा दूसरे के मुंह से सुनता है, और भिखारी हट, कोई ने कहा वो क्या अपने को भिखारी मानता है? नहीं, भिखारी के वेश में आया हो। ये लोग भले समझते मैं भिखारी हूं, मैं तो राजा हूं, समझ में बात आती है, मैं तो ईश्वर हूं। ये लोग मुझे जीवात्मा कहते तो कहने दो, कर्ता कहते तो कहने दो, फल भोक्ता कहते तो कहने दो, योनि भ्रमण करने वाला कहते तो कहने दो, असल में मैं तो ईश्वर हूं, मेरे कृष्ण परमात्मा ने मुझे समझा दिया है, ईश्वर सर्वभूतानां। तो देखिए यहां पर वही समन्वय की बात है, तत्त्वमसी महावाक्य के द्वारा समझाया गया है कि हे जीव, तू जीव नहीं, अज्ञान से तू मानता था, अब समझ कि तू ही ईश्वर है, मगर तूने अपने को देह मान लिया। आई एम मिस्टर सो एंड सो। कितने साल उम्र हो गई? 56। तो उम्र किसकी बताई आपने? देह की। तो आपने अपने को क्या माना? देह। कहां रहते हो? ये मेरे एड्रेस, मैं यहां रहता हूं। अरे यहां तो तेरा शरीर रहता है यार, मगर हमने माना शरीर ही तो मैं हूं, इसलिए मैं रहता हूं, ये मेरा एड्रेस। मेरे दो बच्चे हैं, एक पत्नी है। अब बच्चे तो दो चार हो सकते, पत्नी भी एक ही हो सकती है, ठीक है। तो मैं इसका पति हूं, इसका बाप हूं, ये उपाधि फिर आपने स्वीकार कर ली। अब बाप होके तो जन्मे नहीं थे ना, कब बाप कब बने हैं? बाप की बर्थ डेट क्या है? बाप की कोई बर्थ डेट नहीं होती, बच्चा पैदा होता है वो मोमेंट से वो बाप कहा जाता है। बाप जन्म नहीं लेता है, पति जन्म नहीं लेता है, हस्त मिलाप होने के बाद में अग्नि की शास्त्री में वो मोमेंट से उसको पति कहा जाता है। ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा माया के साथ संलग्न होने से ईश्वर कहा जाता है, ईश्वर जन्मता नहीं है, और अविद्या की उपाधि लेने से उसको जीव कहा जाता है, पति कहा जाता है, पिता कहा जाता है, पति और पिता की कोई बर्थ रेट नहीं होती, ऐसे समझना है। तो यह समन्वय है तत्पद का और त्वम पद का। ऐसे ही त्वमपद वाचार्थ जीव और तत्पद वाचार्थ ईश्वर दोनों एक ऐसा असी पद के द्वारा समन्वय किएगा। इसी ढंग से त्वमपद का लक्षार्थ साक्षी चैतन्य और तत्पद का लक्षार्थ ब्रह्म, वो दोनों का अभेद और अद्वय यहां पर बताया गया है। ये कौन समझाता है? साक्षात्कार गुरु उपदेश के द्वारा ये सब चीज समझी जाती है, मगर समझने के लिए, समन्वय करने के लिए और मैं वो हूं ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्त्वमसी महावाक्य का बोध होना बहुत ही आवश्यक है। अगर बोध हो गया तो संसार में पुनरावृत्ति आपकी कभी नहीं होती, उसका अंत हो जाता है, और ऐसे संसार की निवृत्ति कराने वाला जो सद्गुरु है उसको हम नमन करते हैं। तस्मै श्री गुरु मूर्ते नमैदम श्री दक्षिणा मूर्ते। अब तत्व ज्ञान के ऊपर आते हैं। यहां पर आया असत कल्पार्थकम भासते। ये जगत के जितने पदार्थ हैं ये सत हैं? बोले नहीं, सत तो नहीं है, असत हैं, अनित्य हैं, मिथ्या हैं। अरे समझ दो, कैसे शब्द बोले जा रहे हो? नहीं, पूरा जगत असत्य है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अच्छा, ये अगर ये सब असत है, टोटल नॉन एग्जिस्टेंस असत का मतलब होता है, अस्तित्व में ही नहीं है, तो उनका अनुभव भी नहीं होता हमको। देखिए मैं आपको कहता हूं, टोटल नॉन एग्जिस्टेंस जगत कैसा है? शस्य सिंहवत, खरगोश, खरगोश, खरगोश के सिंह जैसा जगत है। मतलब क्या हुआ? अच्छा, खरगोश का सिंह नहीं होता है। हाँ ठीक, अच्छी बात है। अच्छा, ये रानीबाग मुंबई में है, देख क्या है। तो देखिए, खरगोश का सिंह नहीं होता है, मगर जगत अगर है अस्तित्व में तो खरगोश के शस्य सिंहवत, सिंह जैसा है। नहीं नहीं, ऐसा समझ में नहीं आता। तो कहते ख पुष्पवत, ख मतलब आकाश, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म मतलब वो ख आकाश के जैसा ब्रह्म है। तो खम का मतलब है आकाश, तो ख पुष्पवत। अरे आकाश में कोई पेड़ थोड़ी उगता है, नहीं, पौधा होता है नहीं, तो पौधा नहीं होगा तो फूल होगा नहीं। अरे पौधा होने के लिए तो धरती चाहिए, ऊपर कहां धरती है, इसलिए उसका नाम गगन है, आकाश है, ख है, और ख के अंदर जो घूमता है उसको कहते खग, खग मतलब पक्षी, ख में घूमने वाला खग, और जो जो ख में घूमते हैं उसका नाम है खेचर। एक तो जलचर पानी में रहने वाले, खेचर आकाश में उड़ने वाले, एक भूचर भूमि पर चलने वाले। अच्छा, तो यहां पर मैं आपको समझाना यह चाहता हूं कि कोई जगत के जितने पदार्थ हमको आंख से दिखाई देते हैं और जिसका हमको ज्ञान प्राप्त होता है वो टोटल नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है। सस्य सिंहवत नहीं, ख पुष्पवत नहीं, गगन कुसुमवत भी नहीं, मूर्ख जल के प्रपात जैसा है नहीं, वंध्या पुत्रवत है। और वंध्या का पुत्र कहां होता है, तो बस ऐसा ही जगत है। तो बोले नहीं, टोटल नॉन एग्जिस्टेंस, मात्र असत तो नहीं है, तो जगत क्या है, सत है। अरे सत है इसलिए हम जगत के पदार्थ के पीछे पड़े। अगर जगत सत है, उसके पदार्थ सत हैं, तो तीनों काल में रहने चाहिए, मगर तीनों काल में रहते नहीं है। जो कुछ पदार्थ हमने कृत्य किए हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं, भोग समाप्ति भी हो जाते हैं। अगर सत है, सत का मतलब क्या है, विच एग्जिस्ट इन ऑल थ्री पीरियड्स ऑफ टाइम, त्रिकाले अपितिष्ठति इति सत। अगर जगत के पदार्थ सत्य हैं तो तीनों काल में रहने चाहिए, मगर जागृत अवस्था में दिखते हैं। और जो पदार्थ जो घर में इकट्ठी चीज की है, टीवी है, डेकोरेशन पीस है, बड़े बड़े हीरे जवाहरात हमारे कबाट में रखे हैं, अच्छे से साड़ियां कपड़े सूट रखे हैं, जितनी चीज हमने घर में इकट्ठी की है ना, सो जाते हैं सुषुप्ति में, कुछ नहीं पता चलता है कि मेरे घर में, तो घर ही पता नहीं चलता है, तो सुषुप्ति में इसका अभाव होता है। क्यों, उसको प्रकाशत्व नहीं पदार्थों को, पदार्थ को अपनी सत्ता नहीं है। वरना तो नींद में बोलता, मैं कबाट में ये रंग का सूट बैठा हूं, तिजोरी में ये हीरे की मैं अंगूठी हूं, ऐसा बोलते वो लोग, वो लोग नहीं कहते हैं। और सुषुप्ति में आपका अनुभव क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, अहम किमपि न जानामि। सुषुप्ति में आपको पता है कि आपके चार बंगले हैं अलग अलग शहरों में, नहीं। सुषुप्ति में पता होता है कि मेरा इतना बैंक बैलेंस है, नहीं। सुषुप्ति में पता है इतनी इतनी कंपनी के इतने इतने शहर मेरे पास है, नहीं, कुछ पता नहीं। क्यों, सुषुप्ति में नहीं हो सकता, वो सत्य ही नहीं है पदार्थ। सत होते तो तीनों काल में सुषुप्ति में भी रहते, जागृत में भी रहते, स्वप्न में भी रहते हैं। तो जगत का पदार्थ सत्य तो नहीं है क्योंकि तीनों काल में नहीं है, तो असत भी नहीं है। असत होते उनका अनुभव ना होता, अनुभव तो होता है, तो क्या है। इसलिए शंकराचार्य ने यहां कहा असत कल्पार्थकम भासत है, असत नहीं है, असत है, असत तुल्य, असत है ऐसा भासता है, असत कल्पार्थकम भासत है। और ऐसा जो भासता है और जो सत नहीं कहा जाता है, जो असत नहीं कहा जाता है, उसको शास्त्र में नाम दिया है मिथ्या। तो ये जगत के पदार्थ कैसे हैं, मिथ्या है, सत भी नहीं असत भी नहीं। समझने के लिए अंधेरे में पड़ी हुई वो रस्सी, और जब उसमें आपने सांप देखा तो क्या सांप सच है, तो क्या असत है, असत होता तो दिखता ही नहीं, और उसके डर से आप भागते नहीं और भाग के लालटेन लेके आते नहीं, मैं डर गए कि सांप काटेगा, जहरी होगा, मैं मरूंगा, डर के भाग गए, भागने की प्रवृत्ति की। यानी जो सांप सत नहीं है, आपने कहा असत है, तो असत ने भय पैदा किया। देखिए, और याद रखने एक बात, आज जो चीज असत होती है वही भय पैदा करती है। आत्मा कभी भय पैदा नहीं करेगा, कभी भय पैदा नहीं करेगा। वो सांप असत था, उसने भय पैदा किया, अब भागे लालटेन लेके आए, हे ये तो दूरी है। अच्छा, तो जो सांप देखा था, जो सांप का भय लगा था, जो सांप ने प्रवृत्ति कर्म करवाया भागने का, वो सांप कहां गया? अरे बैटरी मारी तो सांप कहां गया? चला गया? नहीं था तो भागे क्यों? वैज्ञानिक बन गए, नहीं था, नहीं था तो भागे क्यों? था तो था, तब भागे ने? हाँ, अज्ञान में, मगर अज्ञान में तो देखा था ने, तो लालटेन लाए, वो सच है कि अज्ञान की लालटेन है? तो देखो भाई, अगर सांप सत होता सर्प तो तीनों काल में रहता, लालटेन लाते फिर भी सांप दिखता, मगर लालटेन लाए तो सांप दिखता नहीं है, मतलब सत तो नहीं है, असत होता तो दिखता ही नहीं। तो जो सत नहीं असत नहीं वो कैसा है? मिथ्या है। तो असत कल्पार्थकम भासत है, ये शंकराचार्य महाराज ने समझाया, यस्यैव स्फुरणम सदात्मकम असत कल्पार्थकम भासते। अब धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। असत कल्पार्थकम भासते, जो सत नहीं असत नहीं इसका अर्थ क्या है? अब तत्व ज्ञान समझना है, खाली मिथ्या शब्द को नहीं पकड़ना है मात्र।